is all right. Satan can tolerate to a certain extent.
जो उपदेश करना है वो कुछ हद तक ठीक है शैतान के लिए.
बट वेन ही सी ए बिलीवर इज ऑन द नीज इज रियली ट्रम्बलिंग बिफोर दैट.
लेकिन कोई विश्वासी को अपने घुटने के ऊपर प्रार्थना में आते हुए देखता है तो वो कांपता है.
ऑल द पावर्स ऑफ द डार्कनेस आर अगेंस्ट हिम सो दे वी हैव टू लेबर इज एक्चुअली ए स्पिरिचुअल फाइट.
तो इस तरह प्रार्थना करने वाले के विरोध में सर्व अंधकार की शक्तियां आती है इसलिए वो बहुत परिश्रम करना पड़ता है.
सीन कोलोशियंस चैप्टर 4 वर्स 12 पॉल सेज अबाउट एपफ्रास ही वाज लेबरिंग फॉर यू इन प्रेयर.
और एपफ्रास के बारे में पौलुस कोलोशियों की पत्री में चौथे अध्याय में कहता है कि किस तरह वो प्रार्थना में आपके लिए परिश्रम करता है.
बट बाइबल इज नॉट दैट एनकरेजिंग फॉर अ लॉन्ग प्रेयर इन द पब्लिक.
लेकिन जब भी हम इकट्ठा होते हैं दूसरों के साथ में तभी लंबी लंबी प्रार्थना करने के लिए बाइबल नहीं बताती.
द बाइबल इज मोर एनकरेजिंग ऑन एन इफेक्टिव प्रेयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
लेकिन बाइबल विशेष करके हमें इसके बारे में बताता है कि एक परिणामकारक प्रार्थना कैसे करें.
वेदर इज अ लॉन्ग और शॉर्ट लॉन्ग प्रेयर यू कैन डू इट इन योर होम इन द क्लोसेट बट पब्लिक प्रेयर शुड बी शॉर्ट.
जो लंबी प्रार्थना है आप अकेले जब भी घर में है या कमरे में बंद करके आप परमेश्वर से प्रार्थना लंबी समय तक कर सकते हैं. लेकिन सार्वजनिक प्रार्थना जो होती है वो छोटी होनी चाहिए.
वी नीड टू ऑलवेज कम्युनिकेट विद गॉड.
और हमें हमेशा परमेश्वर के साथ संबंध रखना चाहिए.
इन दैट केस आई लव टू रीड द टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ नहेम्या.
और इसी संदर्भ में नहेम्या का जो गुण वैशिष्ट्य है वो मैं बताना चाहता हूँ.
आई ऑलवेज कॉल हिम एज अ मैन ऑफ इंस्टेंट प्रेयर.
और मैं हमेशा उसको तुरंत प्रार्थना का मनुष्य बताता हूँ.
व्हेन ही वाज टॉकिंग टू द किंग ही वाज प्रेइंग टू गॉड.
जब भी वो राजा के साथ बातें करता है तभी परमेश्वर से प्रार्थना करता है.
शॉर्ट शॉर्ट प्रेयर वी सी देयर इन द होल बुक ऑफ नहेम्या.
छोटी छोटी प्रार्थना हम नहेम्या के पुस्तक में देखते हैं.
एंड हाउ वंडरफुली गॉड आंसर्ड हिज प्रेयर्स.
और कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना है.
इन द एंटायर बुक ऑफ नहेम्या मोर देन 11 टाइम्स वी रीड द नहेम्या प्रे टू गॉड.
और 9-11 बार नहेम्या के पुस्तक में नहेम्या ने कैसी प्रार्थना की उसके बारे में उल्लेख आया है.
दैट इज द इफेक्टिव प्रेयर. इट्स नॉट अ लॉन्ग प्रेयर बट शॉर्ट प्रेयर कॉन्स्टेंटली इन टच विद गॉड.
इस तरह की प्रार्थना परिणामकारक प्रार्थना है. लंबी लंबी नहीं छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमेशा संबंध में रहना.
नाउ इन दिस पैसेज फ्रॉम वर्स 13-18 इफ यू रीड.
अभी इस अध्याय में जब 13-18 तक जब पढ़ते हैं
there are 7 times the word prayer appears.
7 bar prarthana ka naam aaya hai.
I don't think any other passages having this much word time the word prayer appears.
मुझे नहीं लगता कि दूसरे कहां इतने छोटे से अध्याय में या शास्त्र भाग में बहुत बार प्रार्थना के बारे में बताया है.
दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस पैसेज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैसेज स्पीकिंग अबाउट द प्रेयर.
इसलिए यही शास्त्र भाग जो है वो बहुत सुंदर प्रार्थना के बारे में बताने वाला शास्त्र भाग है.
नाउ हियर द 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रेयर इज मेंशन.
यहाँ 7 प्रकार की प्रार्थना के बारे में कहा है.
लेट अस हैव अ लुक इनटू दैट.
तो हम उसके बारे में देखें.
वर्स 13 we read like this. If any man have among you is afflicted, let him pray.
यदि तुम तेरा वचन में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे.
A person who is having suffering difficulties.
कोई दुख है सताव है उसके जीवन में तो
some difficulties we can share with others.
कोई कठिनाइयां हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं.
But some difficulties we cannot share with anyone.
लेकिन कोई कठिनाइयां है दुख है दूसरों को बता भी नहीं सकते.
If we share with them they will sometimes mock at us, they may be laughing at us.
अगर ऐसा करें तो शायद वो अपने को हंसी में उठाएंगे.
So if we have an affliction difficulties only one place we can go is the presence of God.
तो हम अगर दुख में है कठिनाई में है तो एक ही जगह है परमेश्वर के सानिध्य में जाए.
So he who is afflicted let him pray.
तो जो कोई दुखी है उसको प्रार्थना करनी चाहिए.
So we can call this prayer as a private prayer.
तो इस प्रार्थना को हम एक व्यक्तिगत प्रार्थना ऐसा समझे.
So this is the first reference of prayer here is a private prayer.
एक खुद खासगी प्रार्थना के रूप में इसको नाम दे सकते हैं.
Now नेक्स्ट वर्स वी रीड वर्स 14.
चौदहवें पद में हम दूसरी प्रार्थना देखते हैं.
इज एनी मैन एनी सिक अमंग यू लेट हिम कॉल फॉर द एल्डर्स ऑफ द चर्च एंड लेट देम प्रे ओवर हिम अनॉइंटिंग हिम विद ऑयल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड.
यदि तुम में से कोई रोगी है तो वह कलीसिया के धर्मवृद्धों को बुलाए और धर्मवृद्ध प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे.
इफ एनीबडी इज सिक यू शुड इन्फॉर्म टू द एल्डर्स लेट देम कम एंड प्रे फॉर दैट सिक पर्सन.
कोई बीमार है तो कलीसिया के एल्डर्स को बुला के वो प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं.
नोटिस द वर्ड इज यूज्ड लेट देम प्रे.
और यहाँ लिखा है कि वो प्रार्थना करे.
इट इज अ यूनाइटेड प्रेयर नॉट एन इंडिविजुअल प्रेयर. इट्स नॉट अ प्राइवेट प्रेयर. इट्स अ यूनाइटेड प्रेयर. द एल्डर्स एंड द सिक पर्सन दे आर यूनाइटेडली प्रेइंग.
अभी वो अकेला प्रार्थना करता ऐसा नहीं है लेकिन वो जो एल्डर है वो बीमारी व्यक्ति के साथ में मिलकर प्रार्थना करता.
सो वी कैन कॉल इट एज अ यूनाइटेड प्रेयर.
तो एक सामुदायिक प्रार्थना का इसका वो नाम दे सकते हैं.
प्राइवेट प्रेयर नॉट ओनली दैट इज नीडेड बट वी नीड यूनाइटेड प्रेयर ऑल्सो.
केवल वैयक्तिक जो खासगी जो प्रार्थना है इतना ही नहीं लेकिन सार्वजनिक प्रार्थना भी होनी चाहिए.
एंड नाउ वर्स 15 यू सी अनदर एस्पेक्ट ऑफ द प्रेयर.
अभी 15वां वचन हमें और एक प्रार्थना के बारे में बताता है.
दिस इज द थर्ड टाइम द वर्ड प्रेयर अपीयर्स हियर.
या तीसरा शब्द है तीसरे बार आया हुआ उल्लेख.
एंड द प्रेयर ऑफ फेथ शैल सेव द सिक एंड द लॉर्ड शैल रेज हिम अप एंड इफ ही बी कमिटेड सिंस दे शैल बी फॉरगिवन हिम.
तब विश्वास की इस प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा.
सो हियर वी सी दैट प्रेयर ऑफ फेथ.
यहाँ विश्वास की प्रार्थना के बारे में देखते.
सो हियर दिस दैट द प्रेयर शुड बी इन एब्सोल्यूट फेथ गॉड विल हील दैट सिक मैन.
और हमारी प्रार्थना हमेशा विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा मनुष्य रोगी बच जाता है.
सो कन्फेस द सिन एंड गॉड विल हील दैट मैन.
तो पापों को कबूल करो प्रभु उसको चंगाई दे सकता.
सो द थर्ड प्रेयर वी सी द प्रेयर ऑफ फेथ.
तीसरी प्रार्थना को अभी हमने देखा वो विश्वास की प्रार्थना है.
नाउ कम टू वर्स 16 अगेन द वर्ड प्रेयर अपीयर्स देयर.
अभी 16वें पद में फिर से प्रार्थना का उल्लेख है.
आई कन्फेस योर सॉल्स वन टू अनदर एंड प्रे वन फॉर अनदर दैट ई मे बी हील्ड. दैट इज व्हाट वी रीड.
इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम स्वस्थ हो जाओ.
सो अगेन द वर्ड प्रेयर अपीयर्स हियर इन वर्स 16 फर्स्ट पार्ट.
ये 16वें पद के पहले भाग में पुनः से एक बार प्रार्थना का उल्लेख आया है.
कन्फेस योर फॉल्स वन अनदर एंड प्रे वन अनदर. दैट इज व्हाट प्रे वन अनदर.
यहाँ लिखा है कि एक दूसरों के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो.
सो द फोर्थ कैटेगरी ऑफ प्रेयर इज अ म्यूचुअल प्रेयर.
तो ये चौथी प्रार्थना है कि जो एक दूसरों के लिए प्रार्थना करनी.
यू प्रे फॉर मी आई विल प्रे फॉर यू.
मैं आपके लिए और आप मेरे लिए प्रार्थना.
सो म्यूचुअली वी हैव टू प्रे.
तो एक दूसरे के लिए इस तरह प्रार्थना करनी.
सो हियर इज अ म्यूचुअल प्रेयर इज रेफर्ड इन वर्स 16.
तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के बारे में यहाँ लिखा है.
नाउ अगेन वर्स 16 अनदर एस्पेक्ट ऑफ द प्रेयर इज मेंशन.
इसी पद में और एक प्रार्थना का भाग देखते हैं.
देयर इज मेंशन दैट इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ द राइटियस मैन अवेलत मच.
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है.
हियर वी सी दैट इट शुड बी कॉल्ड एज इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर.
यह एक प्रभावी और फलदायक प्रार्थना के बारे में कहा.
एंड इट मीन्स दैट इट इज अ प्रेयर ऑफ अ राइटियस मैन.
और यहाँ लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना.
सो वी शुड बी सिंसियरली वी शुड प्रे टू हिम.
तो इस तरह एकदम सिंसियरली इस प्रकार की प्रार्थना करनी है.
सो दिस प्रेयर द नेम इज इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर.
तो इसका नाम हम दे सकते हैं जो प्रभावकारी फलदायी प्रार्थना.
नाउ द सिक्स्थ वन वी कम इन वर्स 17.
अभी छठवीं प्रार्थना के बारे में हम 17वें पद में देखते हैं.
एलाइजा वॉज अ मैन सब्जेक्ट टू लाइक पैशन एज वी आर एंड ही प्रेड एर्नेस्टली.
नबी एलिया भी हमारे ही जैसे स्वभाव के मनुष्य थे. उन्होंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि पानी न बरसे.
So here we see the sixth reference of prayer, the word, we see the earnest prayer.
ये छठवां उल्लेख है यहाँ प्रार्थना के बारे में, एक गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना.
Actually, if you allude in the original language, the meaning is prayed in prayer. That is, while praying itself earnestly, it is emphasized and prayed. That is the meaning of it.
गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना, मतलब प्रार्थना में प्रार्थना करना.
That's very interesting, isn't it? Prayed in prayer.
प्रार्थना में प्रार्थना करना.
So God, sometimes when we pray, we understand it's not that. So then we pray earnestly, then God gives the answer to that.
इस तरह सर्वसाधन प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर नहीं सुनता ऐसा लगता है, तो वे प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं.
We have that example in the prayer of Elijah.
और ये उदाहरण हम एलिया के जीवन में देखते हैं.
Okay, let us turn to the seventh prayer here mentioned.
और सातवीं प्रार्थना के बारे में आगे लिखा
है. Verse 18.
अठारहवें पद में.
And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth fruit.
फिर नबी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई.
Here we see that he again prayed, or a continuous prayer.
यहाँ फिर उसने प्रार्थना की ऐसा कहा है, मतलब कि सदा वे प्रार्थना में रहना है.
Prayer always.
हमेशा प्रार्थना करना है.
So here we see the seven reference of prayer, and that is why I said this is one of the most beautiful passage that speaks about prayer.
तो इस तरह सात बार प्रार्थना का उल्लेख आया है, इसलिए ये शास्त्र भाग जो है प्रार्थना के बारे में बहुत सुंदर शास्त्र भाग है.
There are various needs are there for which we need to pray.
बहुत सारी हमारी जरूरतें रहती है, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है.
The best example for prayer is our Lord Jesus Christ himself.
प्रार्थना का एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह का.
Luke's Gospel is the one which describes the maximum prayer of Lord Jesus Christ.
लुकार के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के बहुत बार प्रार्थना करने के जीवन के बारे में कहा है.
As a man, the Son of God was continuously in communion with the Father.
ए मनुष्य के नाते परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर पिता से हमेशा संबंध रखता था.
If the Lord Jesus Christ need to pray like that, how much more we need to pray in our life?
अगर प्रभु यीशु मसीह को इस तरह प्रार्थना में जीवन बिताना पड़ता था, तो हम सर्वसाधारण मनुष्य कितने प्रार्थना में रहना चाहिए.
There are so many situations which demands prayer.
बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में प्रसंग आते हैं जिसके लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है.
इन दिस पैसेज देयर आर फोर सिचुएशंस आर मेंशन्ड फॉर विच द प्रेयर इज रिक्वायर्ड.
ये अध्याय में, ये शास्त्र भाग में चार ऐसे प्रसंग है कि जिसके लिए प्रार्थना की जरूरत है.
वी विल हैव ए ब्रीफली लुक इनटू द फोर सिचुएशन बाय विच डिमांड्स अवर प्रेयर.
चार अवस्था है या चार प्रसंग है जिसके कारण हमें प्रार्थना में रहना है, उसके बारे में.
नाउ वर्स 13 सेज इफ एनी अमंग यू अफ्लिक्टेड.
13 पद में कहा है कि अगर कोई दुखी है.
Afflicted in the suffering, that is the meaning of it.
दुखी है मतलब कि ये एक सताव के कारण दुखी है.
There are different situations or circumstances comes that is sufferings can come in our life.
अनेक प्रकार की परिस्थिति के कारण हमारे जीवन में इस प्रकार का सताव या दुख आता है.
Or it can be called say that those who are in trouble, they need to be prayed.
और दूसरा इसका कहने का मतलब ये है कि जो खराब स्थिति में है वो प्रार्थना करे.
There are situations in our workplace, there are situations in the habitation where we are dwelling places, the difficulties are there, various difficulties will come.
हमारे काम करने की जगह पे हम जा रहते हैं, उसके आजू बाजू में उसके कारण हमारे ऊपर इस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है.
Sometimes our financial needs are there.
बहुत बार हमारी आर्थिक जरूरतें होती है.
The social needs are there, social problems we may face.
सामाजिक समस्या कभी कभी हमारे ऊपर.
The workplace we may have be harassments are there.
काम के जगह पे हम इस प्रकार देखते हैं सताव किया जाता है.
यू नो दैट जोसेफ ही वॉज इन ए वेरी सिंसियर वर्कर. ही वॉज
यूसुफ किस तरह अच्छी तरह से काम करने वाला मनुष्य था.
आई कॉल हिम ए वर्कहोलिक मैन.
जो जैसे कि वर्कहोलिक मनुष्य के समान में
डे एंड नाइट ही वॉज वर्किंग.
रात दिन वो काम करता था.
आई वंडर मेनी टाइम पीपल से दैट जोसेफ वॉज एन एक्सेम्पलरी मैन. ओके इज गुड मैन बट आई वंडर अबाउट दिस नेचर.
वो यीशु बहुत अच्छा मनुष्य था इस प्रकार लोग कहते हैं, लेकिन इस प्रकार का उसका जो गुण था उसके बारे में मुझे जरा चेक लगता है.
आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द लाइफ ऑफ जोसेफ.
ये सब के जीवन का मैं अभ्यास करता
हूँ. एवरी टाइम वी सी दैट वॉज हार्ड वर्किंग.
बहुत कठिनाई से वो काम करते हैं.
हिज ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी फॉर हिज मास्टर.
और उसका एक ही उद्देश्य था कि उसके धनी के लिए वो पैसा कमाए.
यू नो व्हाई ही लैंडेड अप इन ट्रबल.
वो जो सताव में या दुख में क्यों पड़ा मालूम.
स्क्रिप्चर इज वेरी क्लियर बिकॉज यू सो वर्किंग यू वांट टू फिनिश हिज वर्क.
ये शास्त्र में निश्चित रूप से कहा है कि वो हमेशा काम में काम ही करता था.
देयर से दैट ही एंटर्ड इनटू द हाउस व्हेन नो वन वाज देयर.
और वो उसी दरमियान ही वो घर में गया जिस घर में कोई नहीं था दूसरा.
बिकॉज ही वांट टू फिनिश द वर्क.
क्योंकि वो काम खत्म करना चाहता था.
ही शुड हैव बीन हैव यूज्ड लिटिल विजडम.
और थोड़ा सा ज्ञान का इस्तेमाल करता तो.
ही शुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू अ प्लेस वेयर द लेडी इज देयर ओनली इन हर प्रेजेंस.
जिस घर में केवल स्त्री है ऐसे घर में वो प्रवेश किया.
ही मेड अ मिस्टेक बिकॉज ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन हिज वर्क. दैट इज द प्रॉब्लम.
वो उसने गलती की क्योंकि वो हमेशा उसके मन में काम का ही विचार करता था.
बट फाइनली व्हाट हैपेंड यू नो दैट ही लैंडेड अप इन द जेल.
लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ आपको मालूम है कि वो उसको जेल जाना पड़ा.
द अननेसेसरली एक्यूजेशंस मे कम इन द वर्क प्लेस.
तो इस तरह कोई कारण के बिना आपके ऊपर भी इल्जाम लगाए जाते
हैं. अनएक्सपेक्टेड एक्यूजेशंस मे कम.
अजीत जी का कभी आपने अपेक्षा नहीं की.
आई हैव टोल्ड यू दोज आर यंगस्टर्स नाउअडेज सो मच ऑफ वर्किंग आई फील सॉरी रियली समटाइम्स.
और बहुत सारे हमारे नौजवान इस प्रकार का काम करते हैं उनको देख के मुझे बहुत दुख लगता है.
नाउ द न्यू फ्रेज हैज कम 24/7 इज इन दैट्स
नया शब्द प्रयोग है 24/7 करके.
यू नो व्हाट इट मीन्स.
इसका मतलब क्या है हम जानते हैं.
24 hours 7 days यू आर इन रिलेशन विद द कंपनी. दैट्स द मीनिंग.
मतलब ये है कि 24 घंटे 7 दिन तक मतलब हमेशा हमेशा वो काम के संबंध
में. एनी टाइम द कंपनी विल कॉल यू एंड आस्क यू टू डू.
कोई भी समय कंपनी आपको बुलाएगी काम करने को बताएगी.
समबडी वाज टेलिंग मी देन द इंटरव्यू टाइम दे सेड दैट यू शुड अंडरस्टैंड नाउ यू आर मैरिड टू द कंपनी. दैट्स द थिंग.
और इंटरव्यू के समय एक ऐसा पूछा गया कि तुम समझना चाहिए अभी कि तुम्हारी शादी कंपनी से हुई है.
वॉट एवर मनी यू वांट वी विल गिव यू गिव टू योर वाइफ. दैट्स ऑल राइट.
जो पैसा आपको चाहिए हम देते हैं आपके पत्नी को दे दो.
लेट मी टेल यू एज ए बिलीवर्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स.
लेकिन विश्वासी के नाते हमें इसके बारे में सतर्क रहना जरूरी है.
वर्क इज नॉट द ओनली प्लेस.
काम करना एक ही जगह नहीं.
जोसेफ इज अ मैन लाइक दैट.
यूसुफ इस प्रकार का मनुष्य.
व्हेन ही केम टू फारो यू सी द कॉन्स्टेंटली ही वाज वर्किंग.
फारो के पास जब आया वो भी हमें काम में रहता.
डे एंड नाइट ही वॉज वर्किंग टू मेक मनी फॉर फारो. दैट इज व्हाट द स्क्रिप्चर सेज.
दिन रात वो फारो के लिए पैसा कमाने के लिए काम करता रहता.
ही टैक्सेशन वॉज मेड.
टैक्सेशन जब भी करते थे.
नोवेयर इन द वर्ल्ड सच अ टैक्सेशन इज देयर.
इस प्रकार का टैक्स कभी दुनिया में किधर.
व्हाट वॉज द टैक्सेशन. 1/5 शुड बी गिवन टू द फारो.
और वो क्या नियम था कि एक पंचमांश हिस्सा जो है वो फारो को देना.
व्हेन गॉड इज आस्किंग 1/10 ओनली ही सेड द 1/5 शुड बी गिवन.
जब भी परमेश्वर हम चाहते देखते हैं कि एक दशमांश चाहता है लेकिन वो तो एक पंचमांश मतलब कितना जाना.
बाइबल सेज दैट ही मेड अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर फारो.
इस तरह बाइबल में लिखा है कि उसने यूसुफ ने फारो के लिए बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया.
बट अ सैड डे केम.
लेकिन दुख का दिन आया.
देयर केम ए फारो हु न्यू नॉट जोसेफ.
एक दिन आया कि ऐसा एक फारो आया बाद में कि वो यूसुफ को जानता भी.
एट द एंड ऑफ योर लाइफ आफ्टर द होल लाइफ टाइम यू आर द बेस्ट एनर्जी यू आर स्पेंडिंग फॉर योर मास्टर. ए डे विल कम दैट नोबडी विल रिकग्नाइज यू.
आपके जीवन के अंत में सब कुछ आपका सब शक्ति और सब कुछ अपने कंपनी के लिए काम के लिए दिया है लेकिन एक दिन आएगा कि आपको कोई भी पहचाने.
आई नो मेनी बिलीवर्स दे रिपेंट एट द एंड ऑफ देयर लाइफ. दे से दैट आई डे एंड नाइट आई लेबर्ड माय कंपनी बट नाउ आई फील सॉरी फॉर दैट.
और ऐसे कोई विश्वासियों को मैं जानता हूँ कि वो अभी दुख करते हैं पछताते हैं कि वो कहते हैं कि दिन रात मैं कंपनी के लिए दिया परिश्रम किया लेकिन अभी कोई मुझे जानता भी नहीं.
देयर इज नॉट अ सिंगल मेंशन इन द लाइफ ऑफ जोसेफ. सो मेनी चैप्टर्स आर देयर. नॉट अ सिंगल मेंशन दैट ही मेड एन ऑल्टर एंड वर्शिप गॉड.
यूसुफ के पूरे शास्त्र भाग में जो उसका वर्णन है उसके जीवन में पूरे जीवन भर हम कभी वेदी के बारे में यूसुफ के जीवन में नहीं देखते हैं.
डोंट फील दैट आई एम अगेंस्ट जोसेफ.
मैं यूसुफ के विरोध में हूँ ऐसा मत समझिए.
जोसेफ इज अ गुड कैरेक्टर.
यूसुफ उत्तम.
ही वाज अ डे एंड नाइट ही वाज वर्किंग. ही वाज लिविंग फॉर द मास्टर.
वो दिन रात काम करके अपने धनी के लिए काम करता था.
सो इन द वर्क प्लेस वी हैव लॉट ऑफ प्रेशर. डोंट बी कैरिड अवे बाय दैट.
आपके काम की जगह पे इस प्रकार से काम के बहुत सारे प्रेशर आपके ऊपर आएंगे.
द डिफरेंट टाइप ऑफ सफरिंग्स आर देयर इन दैट एरिया.
अनेक प्रकार के जो दुख है वो उस भाग में हम देखते.
मे बी बिकॉज ऑफ फेथ इन द वर्क प्लेस वी मे हैव टू सफर.
शायद हमारे विश्वास के कारण हम काम करते हैं वहाँ हमें दुख.
द बेस्ट एग्जाम्पल इज डैनियल. ही सफर्ड बिकॉज ही वॉज मैन ऑफ प्रेयर.
डैनियल का उत्तम उदाहरण है. प्रार्थना के कारण उसको सतावा है उसके जीवन.
वी नो अबाउट डेविड. ही वॉज डिमोटेड बिकॉज ऑफ हिज फेथ एंड एक्टिविटीज.
और दाऊद को भी कैसे है उसके विश्वास के कारण और उसके कार्यक्रमों के कारण उसको नीचे किया गया.
व्हाट आई मीन देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी मे फेस इन दिस लाइफ.
और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हमारे ऊपर आ सकती है.
नाउ द जेम्स सेज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द ट्रबल इज प्रेयर.
और याको हमें कहता है कि इन सब के ऊपर एक ही उत्तर है कि प्रार्थना.
सो वी शुड स्पेंड टाइम इन प्रेयर. गॉड विल मेक अस टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम.
अगर हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं तो इन सब के ऊपर प्रभु परमेश्वर हमें विजय देगा.
द सेकेंड सिचुएशन हियर इज डिमांडिंग फॉर प्रेयर इज प्रे फॉर सिक वन.
अभी दूसरी प्रार्थना हम यहाँ बताए गए हमें कि जो रोगी है उनके लिए प्रार्थना करना.
ऑफ कोर्स द सिकनेस इज नॉट ऑलवेज ड्यू टू अवर सिन.
हमेशा जो रोग या बीमारी आती है वो पाप के कारण आती है ऐसा नहीं.
ऑफ कोर्स द सिन एंटर्ड इन द वर्ल्ड दैट्स व्हाई वी पीपल आर फॉलिंग सिक.
लेकिन हम ये जानते हैं कि पाप का प्रवेश इस जगत में हुआ इसलिए मनुष्य पापी मतलब कि बीमार पड़ते हैं.
इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सनल सिन दैट वी आर फॉलोइंग सिक.
लेकिन हमारे वैयक्तिक पाप के कारण ही हम बीमार होते हैं ऐसा नहीं.
वी नीड रीड अबाउट पॉल. ही वॉज अ सिक मैन.
पौलुस इस प्रकार रोगी मनुष्य था हम जानते हैं.
ही वॉज सिक नॉट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल सिन.
उसके कोई व्यक्तिगत पाप के कारण वो बीमार था ऐसा नहीं.
जॉब ही फेल सिक बिकॉज नॉट ऑफ अ पर्सनल सिन.
और आयुब के बारे में भी देखते हैं कि उसके जीवन में भी वो जो बीमार गिरा वो भी उसके पाप के कारण नहीं.
बट इन सम केसेस द सिकनेस कम्स बिकॉज ऑफ अवर सिन.
लेकिन ये निश्चित है कि कभी कभी हमारे ऊपर जो बीमारी आती है हमारे पाप के कारण भी आती है.
सो इन हियर इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट इफ एनीबडी हैज कमिटेड सिन एंड फॉलन सिक ही शुड कन्फेस हिज सिन.
तो इस शास्त्र भाग में जो कहा है वो अगर किसी ने पाप किया है और उसके कारण बीमार पड़ा है तो पाप कबूल करो तो चंगाई प्राप्त हो जाएगी ऐसा कहा है.
इन फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 30 वी सी दैट सम ऑफ द बिलीवर्स इन कोरिंथ वर सिक बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल सिन.
पहला कोरिंथियों का 11वां अध्याय जो है वहाँ हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि हमारे में जो बहुत सारे लोग हैं कि पाप के कारण इस प्रकार बीमार है.
सो हियर वी सी दैट यू शुड कन्फेस योर सिन सो दैट द लॉर्ड विल हील यू.
इस तरह बाइबल में यहाँ जो लिखा है कि आपके पापों को कबूल करो तो तुम चंगाई पाओगे.
सी वर्स 15 वी सी लाइक दैट इफ ही हैव कमिटेड सिंस दे शैल बी फॉरगिवन. कन्फेस योर फॉल्ट्स और सिंस वन टू अनदर.
इस प्रकार के द्वारा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा. प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा. इसलिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को कबूल करो.
सो व्हेन वी आर फॉलिंग सिक इट इज गुड टू एग्जामिन एम आई कमिटेड एनी सिन. इज इट बिकॉज ऑफ दैट माय सिकनेस इज देयर.
तो इसलिए जब भी हम बीमार होते हैं तभी इस तरह का आत्म परीक्षण करना जरूरी होता है कि क्या मैंने कुछ पाप किया है इसके कारण मैं बीमार पड़ा हूँ. इस तरह
इस इज अ पर्सनल एग्जामिनेशन. नो वन एल्स हैज टू इंटरफियर विद दैट.
ये तो वैयक्तिक रीति से किया जाने वाली बात है. दूसरे किसी को उसमें बीच में आने की जरूरत
नहीं है. एंड इफ वी हैव कमिटेड सिन एंड बिकॉज ऑफ दैट द सिकनेस इज देयर वी शुड कन्फेस एंड लॉर्ड डेफिनेटली.
अगर हमने पाप किया है और बीमार पड़े हैं तो निश्चित रूप से पाप कबूली करे तो चंगाई मिलती है.
वी रीड इन जॉन्स गॉस्पेल अ मैन हु वाज सिक फॉर 38 इयर्स.
योहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जो मनुष्य एक मनुष्य 38 साल तक बीमार था.
एंड व्हाई दैट मैन वाज सिक फॉर 38 इयर्स.
वो 38 साल तक क्यों बीमार था.
एंड verse 14, if you read, we understand, he has committed some sin because of that he was fallen sick for 38 years. And Lord said that now more, anymore you should not sin anymore and go away.
और उसको स्वस्थता देने के बाद में प्रभु ने उसको कहा था कि तुम अभी पाप मत करना.
I was wondering when he committed the sin, whether he realized that he is going to fall sick for 38 years.
और जब ही उसने पाप किया तभी क्या उसको मालूम था कि वो पाप करेगा उसके कारण वो 38 साल तक बीमार रहेगा.
In that case he would not have ever seen that.
अगर उसने वो उसको मालूम होता ऐसा उसके विचार करता तो वो कभी पाप नहीं करता.
We don't know the nature of his sin.
उसके पाप का जो किस प्रकार का उसने पाप किया था.
Maybe for a momentary pleasure he committed the sin.
शायद तात्पुरते समय के जो आनंद के लिए उसने कुछ गुनाह किया होगा.
See, let me tell you, the sin always gives only a momentary pleasure.
लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि पाप का जो आनंद है तात्पुरता रहता है.
And its consequences is a lifelong consequences we have to bear.
लेकिन उसका प्रति जो फल है परिणाम है वो बहुत समय के लिए सहन करना पड़ता है.
The Satan always gives us a momentary pleasure.
शैतान हमेशा हमें केवल तात्पुरता आनंद देता है.
In a moment he showed all the glory of the earth to Lord Jesus Christ.
प्रभु यीशु को कि किस तरह उसने एक क्षण भर में पूरी दुनिया की महत्ता दिखाई.
Moses understood that the pleasures of the Egypt is only a momentary event.
मूसा ने समझ लिया था कि इजिप्त या मिस्र का जो आनंद है वो केवल तात्पुरता है.
So the sin is giving a momentary pleasure, but the consequences is a long-term consequences.
इस तरह पाप का जो आनंद है वो क्षण भर का होता है लेकिन उसका परिणाम जो है वो लॉन्ग टर्म मतलब कि बहुत समय रहने वाला होता है.
So here we see this, if anybody has committed sin and fallen sick, they should confess their sin and pray.
तो इस तरह यहाँ लिखा है कि अगर कोई पाप किया है और बीमार गिरे है वो तो पाप कबूल करे तो प्रभु चंगाई देगा.
सो द एल्डर्स शुड यूनाइटेडली प्रे फॉर हीलिंग एंड अप्लाई द ऑयल एंड ही विल बी हील्ड.
तो इस तरह एल्डर्स लोगों ने आके उस मनुष्य के साथ प्रार्थना करनी चाहिए उसके तेल लगा के तो वो चंगा हो जाएगा.
एंड वी नो द जॉब इज अ मैन ऑफ प्रेयर.
प्रार्थना का मनुष्य था.
He was a man of continuous prayer. He was always praying to God.
हमेशा वो प्रार्थना में रहता था.
And but his friends, we don't read that they had any nature of prayer.
लेकिन उनके उसके मित्रों के बारे में हम देखते हैं कि उनके जीवन में कोई प्रार्थना का समय था कि नहीं.
We know the three of his friends came. I think all are highly qualified physicians.
उसके जो तीन दोस्त उसके पास आए थे वो बहुत highly qualified इस प्रकार के समझो कि डॉक्टर थे.
Job chapter 13 verse 4 we read about them. What Job caused them.
आयुब 13वें अध्याय में क्या कहता है उसके दोस्तों के बारे में वो हम देखें.
Verse 4 says like this, but ye are forgers of lies, ye are all physicians, all are doctors, all physicians of no value.
यहाँ जो स्पष्ट रीति से कहा है चौथे पद में कि परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो, तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो.
आई डोंट नो मे बी समवन मे बी स्किन स्पेशलिस्ट बिकॉज द स्किन प्रॉब्लम इज देयर ही आल्सो केम.
हो सकता है उनमें से एक स्किन प्रॉब्लम था उसके लिए तो वो त्वचा रोग तज्ञ भी होगा.
डर्मेटोलॉजिस्ट
त्वचा रोग तज्ञ.
मे बी द हार्ट स्पेशलिस्ट आल्सो वाज देयर.
शायद हार्ट स्पेशलिस्ट भी हो सकता है.
बट वेन इज आवर जॉब सेज दैट यू हैव नो वैल्यू यू आर इफेक्ट यू आर रियली यूर सजेशन यूर ओपिनियंस आर यूजलेस.
इस तरह लेकिन आयुब उनके बारे में क्या कहता है कि तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो.
द स्ट्राइकिंग थिंग वी नोटिस दैट ऑल दे केम देयर एंड सैट विद हिम एंड बट नॉट अ सिंगल टाइम दे टुक टाइम टू प्रे फॉर हिम.
इतना समय उन्होंने आके उसके साथ बिताया लेकिन एक क्षण भर भी उन्होंने उसके लिए प्रार्थना में
एटलीस्ट नहीं बिताया. देन दे केम दे शुड हैव सेड ओके वी विल स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर.
उसके साथ में पास में जब भी आए तो शायद उन्होंने कहना चाहिए था कि थोड़ा समय हम प्रार्थना.
दैट इज व्हाई जॉब सेज दैट यू आर फिजिशियंस बट यूजलेस फिजिशियंस.
इस तरह इसलिए आयुब कहता है कि तुम जरूर वैद्य हो लेकिन निकम्मे वैद्य हो.
They never spend time in prayer with the job.
प्रार्थना में आयुब के साथ उन्होंने कभी समय नहीं बिताया.
That is why Job could not get healing.
और इसके कारण आयुब को चंगाई नहीं प्राप्त
हुई. So we need to be unitedly pray for a sick one that God will heal.
अगर हम एक दूसरों के लिए साथ मिलके प्रार्थना करें तो प्रभु जरूर बीमारियों को चंगाई देता
But
है.
But at the end of the book, in the book of Job, we read that God is telling Job to pray for your friends, and Job is praying for them.
आखिर में यहाँ आयुब के पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर उसके मित्रों के दोस्तों के लिए प्रार्थना करने को कहता है और जब भी आयुब प्रार्थना करता है उसके दोस्तों के लिए वो चंगाई पाते हैं.
So when anybody is sick, we should go there and unitedly pray. God will definitely heal them.
तो अगर कोई बीमार है तो उसके पास मिलके जाके उसके साथ प्रार्थना करे तो प्रभु उसकी प्रार्थना.
The prayer of faith will heal that.
विश्वास की प्रार्थना वो उसको चंगाई देगा.
And if he committed sin, let him confess and God will he recover from the sickness.
और अगर पाप किया है तो पाप को कबूल करना है तभी परमेश्वर उनको स्वस्थता.
Of course, anointing the oil is mentioned. That is applying medicine, medicinal oil. It is nothing else to do with the religious oil.
यह जो तेल मलने के बारे में कहा है वो कोई जो धार्मिक इस प्रकार का कार्य नहीं है लेकिन वो केवल दवा के रूप में इस्तेमाल किया हुआ तेल है.
यू नो वी हैव अनॉइंटिंग ऑयल्स टू यूज फॉर रिलीजियस पर्पसेस. दैट इज नॉट द वर्ड यूज्ड हियर.
या जो धार्मिक कार्य के लिए जो तेल का अभिषेक करने को कहते हैं वो जो करते थे उस प्रकार का ये तेल नहीं है लेकिन ये दवा के रूप में इस्तेमाल किया हुआ तेल है.
द गुड समरिटन वेंट एंड अप्लाइड व्हाट वाइन एंड ऑयल.
जो अच्छा शमरोनी था उसने जाके क्या किया उसने जो दाक मधु और तेल मला उसके जख्म के ऊपर ऐसा
वाइन for a antiseptic because it is preventing bacterial growth and all.
Antiseptic jo hai wo antiseptic is prakar ka kaam karta hai.
Oil, olive oil normally in the wounds they apply for a pain killer.
Aur jo tel hai visheshatah olive oil jo hai wo ek vedna kam karne ke liye vedna shamak ke roop mein uska istemal kiya jata
hai. So the good samaritan went and applied antiseptic and pain killer. That's the thing.
To is tarah jo acha shamroni tha usne jaake ek antiseptic aur vedna shamak ke roop mein daak madhu aur tel ka istemal kiya.
Here massaging, that is this oil is used for massaging so that it can heal the person, sick person.
याकूब के पत्र में जो लिखा है तेल मलना है एक मलने के लिए मसाज के लिए इसका इस्तेमाल.
दैट वर्ड कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ मसाज. अनॉइंटिंग कैन बी ट्रांसलेटेड लाइक दैट.
ये इस तरह जो या हिंदी में तेल मलना कहा है बराबर शब्द लगता है.
दिस करेक्ट. ओके सो दिस इज मेडिसिनल ऑयल और यू कैन यूज मेडिसिन एंड गॉड विल मेक इट इफेक्टिव.
एक दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो परमेश्वर उसको परिणाम देगा उसका.
नाउ फाइनली द थर्ड रीजन फॉर द प्रेयर I don't want to explain detail. You can study that.
Tisra karan hum prarthana ka dekhte hain aage.
Pray for the nation.
Rashtra ke liye
prarthana. Elijah was a man of prayer.
Elijah prarthana ka manushya tha.
What he did it? He prayed for the nation.
उसने क्या किया कि देश के लिए प्रार्थना की.
वी ऑल्सो नीड टू प्रे फॉर अवर नेशन.
हमारे देश के लिए हमें भी प्रार्थना करनी.
देयर आर सो मेनी सजेशंस आर देयर इन द न्यू टेस्टामेंट दैट वी शुड प्रे फॉर द किंग्स एंड ऑल द रूलर्स दोज हु आर रूलिंग अस.
नए नियम के दरमियान बहुत सारे बातें बताई हैं कि जिस तरह जो राजा है या हमारे ऊपर राज्य करने वाले लोग हैं शासक हैं उनके लिए हम प्रार्थना करनी चाहिए.
सो देयर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रेयर ऑफ एलिजा इज गिवन.
तो इस तरह एलिया की प्रार्थना का उदाहरण दिया गया है.
नाउ द फाइनली इन वर्स 19 एंड 20 वी हैव अनदर प्रेयर.
19 और 20वें पदों में हम और एक प्रार्थना के बारे में देखते हैं.
प्रे फॉर द बैकस्लाइडर्स.
जो पीछे जाते हैं विश्वास में उनके लिए प्रार्थना.
द प्रेयर प्रे फॉर द सोल्स दोस हु आर लॉस्ट. वी हैव टू प्रे फॉर देम.
जो भटके हुए लोग हैं उनके लिए प्रार्थना.
एज द टाइम इज अप आई विल बी कंक्लूडिंग. द अदर थिंग्स यू कैन मेडिटेट इन डिटेल.
अभी समय खत्म हो गया है इसलिए मैं समाप्त करना चाहता हूँ. आप इसके ऊपर और मनन कर.
सो वी हैव द फोर रीजंस टू प्रे.
तो इस प्रकार चार कारण है हमारे पास जो प्रार्थना के लिए.
प्रे फॉर द सफरिंग वंस.
जो दुख दुख में है उनके लिए प्रार्थना करना.
द प्रे फॉर द सिक वंस.
और जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करनी है.
एंड द प्रे फॉर द नेशन.
और राष्ट्र के लिए प्रार्थना करनी है.
प्रे फॉर द सोल्स दैट इज लॉस्ट.
और जो भटके हुए लोग हैं और पीछे विश्वास में गए हुए लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करनी.
सो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर स्पिरिचुअल लाइफ.
इस तरह हमारे आत्मिक जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्व है.
we have lot of examples in our own personal life how God wonderfully answers our prayer.
हमारे खुद के जीवन में कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है इसके उदाहरण या अनुभव हमारे पास है.
And we know that you might have heard about the stories of George Muller, how wonderfully God answered his hundreds of prayers.
और जॉर्ज मुलर की प्रार्थना सैकड़ों प्रार्थनाएं कैसे परमेश्वर ने सुनी उसके बारे में आपने सुना होगा.
One of the problem for the mothers is how to keep the children without crying in the assembly gathering. That's the problem.
एक जो माता आए हैं उनके पास अब हमारे छोटे बच्चों को किस तरह कलशा के मीटिंग में बिना रोते हुए उनको रखना एक मुश्किल होता है.
I remember an incident from the George Muller's life.
लेकिन जॉर्ज मुलर के जीवन से मैं एक घटना जानता हूँ.
A huge meeting was going on.
एक बहुत बड़ी सभा चालू थी.
मदर वॉज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द मीटिंग विद अ लिटिल चाइल्ड.
और एक मीटिंग के मध्य में एक माता अपने बच्चे के साथ बैठी थी.
एंड इफ दिस वॉज सिटिंग एट द बैक टू सी व्हाट दिस फेलो इज टॉकिंग.
और एक नास्तिक मनुष्य पीछे बहुत पीछे ऐसा बैठा था कि जो वो बोल रहे थे.
एंड द चाइल्ड स्टार्ट स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग.
और जो बच्चा था वो बहुत जोर जोर से रोने लगा.
यू कैन अंडरस्टैंड द एम्बरेसमेंट ऑफ द मदर इन द मिडिल ऑफ देयर टू गो बिकॉज ह्यूज मीटिंग.
और ऐसे सभा के बीच में मध्य भाग में ये माता थी और अभी वो क्या करे उसके उसका बहुत बड़ा प्रश्न उसके सामने.
एंड द मदर वॉज ट्राइंग टू टेक द चाइल्ड आउट बट द जॉर्ज मुलर सॉ दैट स्ट्रगल ऑफ द मदर.
लेकिन जॉर्ज मुलर ने जब इस माता को देखा कि वो झगड़ रही है बच्चे को किधर दूसरी जगह लेके बाहर जाने के लिए.
एंड ही सेड सिस्टर यू सिट देयर वी विल प्रे फॉर द चाइल्ड सेड द चाइल्ड शुड स्टॉप द क्राइंग.
तो जॉर्ज मुलर ने जोर से कहा कि आप बहन आप उधर ही बैठी है हम प्रार्थना करेंगे बच्चे के लिए.
5 minutes ही प्रेड फॉर द चाइल्ड टू स्टॉप द क्राई.
और प्रार्थना उन्होंने रोने वाले बच्चे के लिए की.
इट इज सो वंडरफुल विद इन 5 minutes द चाइल्ड स्टार्ट स्लीपिंग कंफर्टेबली स्टॉप द क्राइंग.
अद्भुत रीति से 5 मिनट के अंदर वो बच्चा रोना बंद होके सोने लगा.
इट इज रिकॉर्डेड दैट द एथिस्ट ही वॉज वॉचिंग ऑल दिस थिंग एंड ही वॉज वंडरफुल ही वॉज वंडरस्ट्रक इज इट सच अ गॉड इज देयर आई बिलीव इन सच अ गॉड.
और जो नास्तिक पीछे बैठ के उसको सुन रहा था और ये सब देख रहा था वो उसने ऐसा सोचा कि कितना अद्भुत है इस प्रकार का अद्भुत.
Yes, God is a God who can hear our prayer.
हाँ जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है.
If this thing he can remember here, so many other things also he can hear.
अगर ऐसी इस प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है तो अनेक से प्रार्थना को वो जरूर उत्तर.
I know the mothers with the small children, they have this difficulty.
जो माताएं हैं बच्चों के साथ छोटे बच्चों के साथ.
Come prayerfully, the Lord will give sleep to the children.
तो आप प्रार्थना पूर्वक आइए तो कलीसिया के सभा में इस तरह बच्चे गड़बड़ नहीं करेंगे.
Our God is a God who answers our prayer.
हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला प्रभु.
May God bless this words to our heart.
प्रभु परमेश्वर हमारे हृदय के लिए ये सब विचार आशीष करें.